राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय
श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम चतुर्थ सर्गः श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम चतुर्थ सर्गः महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा श्री अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का दरबार में रामायण गान सुनाना। आइए चतुर्थ सर्ग में यहाँ तक की कथा को श्रवण करते हैं।
राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्
श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया।
चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषिः तथा सर्ग शतान् पंच षट्कांडानि तथोत्तरम्
इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है।
कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः।
भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके।
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ।
शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया।
कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत् प्रभुः काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीताया शरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः।
राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता जी के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया।
पाठ्ये गेये च मधुरम् प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम् जातिभिः सप्तभिर्युक्तम् तन्त्रीलय समन्वितम् रसैः शृङ्गार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिरसैर्युक्तम् काव्यमेतद् गायताम्।
वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर है। द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षडज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे।
तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ स्थानमूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वाविव रूपिणौ।
वे दोनों भाई गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ स्थान और मूर्छना के जानकार मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे।
रूप लक्षण संपन्नौ मधुरा स्वर भाषिणौ बिम्बादिवोत्थितौ बिम्बौ राम देहात् तथा परौ।
सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे।
तौ राजपुत्रौ कात्सर्ण्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ।
वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करती थी।
महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्था विदं काव्यं गायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले क्षणाः साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः।
एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण महाकाव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।
प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः।
वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य ही थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है।
चिर निर्वृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम् प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम्।
यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है।
सहितौ मधुरम रतम संपन्नम स्वर संपदा एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम् प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनं दाद यज्ञसूत्रं तथा परः।
लव और कुश ने इतना सुंदर गायन किया कि पहले की भी घटनाएं प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हूँ। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म तो किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया।
कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जी मन्यो महामुनिः वृषी मन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः।
एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गिरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया।
जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्ड मृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषी मन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर् मुदा तत्र महर्षयः।
किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का सदा कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े।
ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यं इदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परं कवीनाम् आधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ।
इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। प्रेमीजनों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है।
आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोर्देववर्चसोः।
भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। एक मुनि ने कहा, संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका गायन किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े ही सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो।
विचित्रार्थ पदं सम्यग् गायकौ समचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायत निःस्वनम् तंत्री लयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायतां ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राशय सुखं ज्ञेयं तद्बभौ जनसंसदि।
प्रभु श्री राम जी ने इस प्रकार अपने भाइयों से कहकर उन दोनों भाइयों को यानी लव और कुश को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था।
इमौ मुनि पार पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत।
उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो।
ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वगायता मार्गविधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव।
तदनंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका कल्याण करें। जय सियाराम।
राम जय राम जय जय राम
श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम